सो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण इस धराधाम पर आए थे और उन्होंने जो बद्ध जीव है उनको आकर्षित करने के लिए, उनको भगवत धाम जाने में रुचि बनाने के लिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं की। तो भगवान की लीलाएं नित्य है, हमेशा भगवत धाम में चलती रहती है भगवान की लीलाएं, और भगवान उन्हीं लीलाओं को जो भगवत धाम की लीलाएं हैं भगवान उन्हें धराधाम पर प्रकट करते हैं। लेकिन ऐसी ही कई लीलाएं हैं जो भगवान वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में नहीं होती, ये धराधाम पे ही प्रकट होती है, है ना? जैसे असुरों से युद्ध नहीं, गोलोक धाम में असुरों से युद्ध नहीं होता। तो जब भगवान को वीर रस का आस्वादन करना होता है तो भगवान के साथ में अनेक रसों में भगवान के साथ हम संबंध बना सकते हैं, और हमारे आचार्य बताते हैं कि उसमें से 5 जो रस मुख्य हैं और 7 गौण हैं, है ना? हो सकता है आपको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे और श्रद्धापूर्वक अगर आप इसको सुनेंगे तो हो सकता है कभी आप इसको समझ पाएंगे इन बातों को। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बातें, क्योंकि आपके सामने नहीं बोलूंगा तो कहाँ बोलूंगा, भक्तों के साथ ये सारे वार्तालाप होने चाहिए, भक्तों के साथ, भक्तों को पता होना चाहिए उनका लक्ष्य क्या है, भक्तों को पता होना चाहिए आचरण कैसे करना है जीवन में, कैसे भक्ति करनी है, भक्तों का संग करना है, किस प्रकार अपराधों से बचना है। अगर ये सारी बातें आपको नहीं बताएंगे, हो सकता है अभी आप इसके लिए तैयार नहीं हो, फिर भी आप सुनेंगे तो आपको अपना लक्ष्य तो पता चलेगा, नहीं? सो भगवान के साथ संबंध बन सकता है अनेक प्रकार से, लेकिन 5 मुख्य हैं और 7 गौण तरह के रस हैं जिसमें भगवान से संबंध बनाया जा सकता है। जो 5 मुख्य रस हैं वो है शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, है ना? ये 5 रस हैं जिसमें भगवान के साथ संबंध बनाया जा सकता है। और जो हमारे आचार्य हैं, जो साधु हैं, वो सब इस तरह से शिक्षा देते हैं कि हम लोग किसी एक रस को पकड़ के आगे उसका पोषण करें उस रस को। हाँ, तो उसकी शुरुआत जो है वो दास्य रस से होती है, इसीलिए आपने देखा होगा इस कौन में जैसे ही कोई हमें लगता है कि भक्ति ठीक से कर रहा है, स्थिर है भक्ति में, तो सबसे पहले उसको दासत्व प्रदान किया जाता है, है ना? सबसे पहले दासत्व उसको प्रदान करते हैं, षटभुज हरि प्रभु, नहीं पावन षटभुज हरिदास, पावन जनार्दन दास, नहीं? सो पहले दासत्व प्रदान करते हैं कि आप अपने दास की भावना लेके आओ, फिर धीरे धीरे जैसे सेवा में लगते हैं तो समय अनुसार आप किस रस में भगवान की सेवा करना चाहते हो वो रस जो है वो धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कोई 6 महीने में हो जाता है, बहुत टाइम लगता है, और उसमें भक्त की निष्ठा, श्रद्धा, सेवा भावना, गुरु पाद आश्रय, हर चीज का अपना महत्व होता है। जितना ज्यादा हम भक्तों की संगति में रहेंगे, जितना ज्यादा हम भक्तों के मार्गदर्शन में रहेंगे, हम लोग भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, अपने जीवन को अधिक से अधिक कृष्ण भावना भावित बनाएंगे, उतनी जल्दी हम पहचान पाएंगे कि हमने करना क्या है। सो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं मुख्य रूप से बहुत ही करुणा के भाव से प्रकट होते हैं, कि वो देखते हैं कि लोग बहुत दुख झेल रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति सोचे कि वो बहुत सुखी है, वो भी एक्चुअली में दुखी है, उसको अभी समझ में नहीं आ रहा कि वो दुखी है। तो भगवान ये दिखाने के लिए कि आध्यात्मिक जगत में कितना सुख है, कितना आनंद है, कितनी प्रसन्नता है, ये दिखाने के लिए भगवान बार बार प्रकट होते हैं, सब भवामी युगे युगे। सो भगवान आते तो हैं हर युग में, लेकिन जो माधुर्य भगवान स्वयं आकर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं ही अवतरित हो जाते हैं, तो उस माधुर्य लीला का कोई भी तुलना नहीं की जा सकती किसी और भगवान के अवतार से। ठीक है, सो भगवान प्रकट हुए 5000 वर्ष पूर्व, और उसके बाद हमारा बहुत ही सौभाग्य है। और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान कभी भी अकेले नहीं आते, जैसे राजा कहीं भी जाएगा तो कभी भी अकेले नहीं जाता, हमेशा अपने सैनिकों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जाता है। नहीं, अकेला जाके क्या करेगा। तो उसी तरह से जब भगवान आए तो पूरा गोलोक धाम से बहुत सारे अपने संबंधी, फ्रेंड्स इत्यादि सबको लेके आए, अपनी क्रीड़ा स्थली लेके आए। सो भगवान जब दोबारा चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, अवतरित हुए, तो चैतन्य महाप्रभु ने जो कृष्ण की लीला में जितने भी भक्त और जितने भी अपने मित्रों को लेके आए थे भगवान, उन सबको दोबारा लेके आए, और उन सबने भगवान के साथ में भगवान की गौर लीला में भाग लिया, है ना, और कृतार्थ हो गए। यहाँ तक कि जय विजय भी जो अपनी सजा पूरी कर चुके थे, जय विजय, जय विजय का जो आखिरी जन्म था, उनको चार कुमारों ने श्राप दे दिया था, नहीं रोक दिया था, छोटे छोटे नंगे बच्चे थे तो रोक दिया वैकुंठ के द्वार पे, पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, बोले ऐसे कैसे जा रहे हो, साइड पर खड़े हो जाओ। तो उनको गुस्सा आ गया, चार कुमारों को श्राप दे दिया कि तुम धरती पे गिर जाओ। तो भगवान ने उनको बोला कि आपके तीन जन्म होंगे, जो कि उनके तीन जन्म हुए हिरण्याक्ष, हिरण्याकशिपु, रावण कुंभकर्ण, और तीसरा अवतार हुआ उनका दत्तवक्र और शिशुपाल के रूप में। तो भगवान ने अलग अलग अवतारों में उनका संहार किया, और उनके साथ लड़ाई करके वीर रस का आस्वादन किया, और वो इतने बलशाली थे कि एक दो बार तो उन्होंने भगवान पे भाला चलाया तो भगवान के हाथ से हथियार छूट के नीचे गिर गया, इतने बलशाली थे। सो भगवान बहुत प्रसन्न हुए उनके इस वीरता को देख के। तो उनकी सजा पूरी हो चुकी थी, शिशुपाल दत्तवक्र का वध कर दिया था भगवान ने, और शिशुपाल दत्तवक्र जो है भगवान के शरीर में दिव्य ज्योति बन के समा चुके थे, और वहां से वैकुंठ धाम जा रहे थे। तभी उनको पता चला कि भगवान दोबारा बहुत जल्दी भगवान आने वाले हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होने वाले हैं। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्लीज प्लीज हमें एक बार और आने दीजिए वैकुंठ धाम छोड़ के, सोच लो। हाँ, तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो वैकुंठ धाम है, ये भौतिक जगत है, यहाँ पे लोग हमारे पे लांछन लगाएंगे, हम तरह तरह के बुरे कामों में लिप्त होना पड़ेगा, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें एक मौका मिलना चाहिए। हाँ, कि हम आपकी जो गौर लीला है उसमें हम भाग ले सके। अगर भगवान कृष्ण की जो लीला है उसको माधुर्य लीला कहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की लीला को औदार्य लीला कहते हैं। जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने माधुर्य रस का प्रदर्शन किया, उन्होंने दिखाया कि माधुर्य रस किस तरह है, कितना सुंदर है और कितना वांछनीय है, कितनी प्रसन्नता का अनुभव होगा उसके अंदर। लेकिन जब भगवान माधुर्य लीला दिखा रहे थे तो उन्होंने असुरों को क्षमा नहीं किया, उनके अपराधों को माफ नहीं किया। किसी भी असुर ने कोई गलत काम किया, भगवान ने उसका वध कर दिया। वो बात अलग है कि भगवान द्वारा वध करना या भगवान द्वारा आशीर्वाद देना एक ही बात है, क्योंकि भगवान परम है, एब्सोल्यूट है भगवान। भगवान किसी को मारेंगे या किसी को प्रेम करेंगे, एक ही फल होगा, उसका कल्याण हो जाएगा, नहीं? लेकिन जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, तो भगवान ने माधुर्य रस की जगह, भगवान ने यह सिखाया कि माधुर्य रस उसका आस्वादन करना वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को बहुत सारे दुष्टों का, पापियों का, आसुरिक व्यक्तियों का सामना करना पड़ा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने किसी का वध नहीं किया, नहीं? चैतन्य महाप्रभु ने हर आसुरी व्यक्ति की आसुरी प्रवृत्ति का नाश कर दिया, उसको भक्त बना दिया उसको, नहीं? और उसके अनेक उदाहरण हैं, ऐसे अमोघ है जो सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद थे, स्वयं सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, जो कि बहुत बड़े मायावादी थे और बोलते थे कि भगवान निराकार है, जो सगुण है वो सगुण, वो भगवान परम नहीं है, परम निराकार है भगवान का सगुण। प्रकाशानंद सरस्वती जो काशी में रह रहे थे वो भी मायावादी सन्यासी थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनका कल्याण किया। और जो जय विजय, वो किस रूप में आए थे? जगाई मधाई के रूप में नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने उनको मारा नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के आग्रह पर उनका कल्याण किया और उनको भक्त बनाया, नहीं? इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अनेकों, एक कुछ गिनती नहीं हो सकती, इतने लोगों का चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किया। तो जिस प्रकार जय विजय भगवान की गौर लीला में भाग लेने के लिए बहुत सी उत्सुकता से आए, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के अनेक पार्षद, अनेक मित्र जो हैं, वो भी भगवान की गौर लीला में भाग लेने के लिए आए थे। क्या कह रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? मैं सारी भूमिका बांध रहा हूँ मुख्य बात पे आने के लिए, ठीक है? मैं ये मानता हूँ कि जो मैं बात आपको बता रहा हूँ थोड़ी सी मुश्किल है समझिए, लेकिन आप लोग अगर श्री प्रभुपाद से प्रार्थना करेंगे तो अवश्य समझ पाएंगे आप लोग, ठीक है। और ये बात अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारे भक्तों का पतन हो जाता है वैष्णव के प्रति अपराध करने से। सो अगर आप इस बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपको सहायता मिलेगी वैष्णव के प्रति कुछ अपराध करने से, ठीक है, आप उससे बच पाएंगे। सो मैं बता रहा था कि जिस प्रकार जय विजय आए, हाँ, भगवान की गौर लीला में भाग लेने के लिए, उसी तरह भगवान के अनेक पार्षद चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग लेने के लिए आए, ठीक है। सो एक पुस्तक है गौर गणोदेश दीपिका, उसमें वर्णन है कि कौन सा व्यक्ति कृष्ण लीला में क्या था और गौर लीला में उस भक्त का या उस पार्षद का क्या स्वरूप रहा, ठीक है। तो बहुत विस्तृत ग्रंथ है, उसमें सारी जानकारी आपको मिलती है। सो जब चैतन्य महाप्रभु के पार्षद आए, हाँ, तो सारे बहुत ही साधारण व्यक्ति लग रहे थे देखने में, है ना, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई भी उसमें चतुर्भुज नहीं था, ना ही कोई मुकुट डाल के घूम रहा था, साधारण से एक गांव के लोग जैसे होते हैं नहीं, वैसे सारे लगते थे। हाँ, सो चैतन्य चरितमृत में एक श्लोक आता है, यार चित्ते कृष्ण प्रेम करे उदय तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे ना पूजे, कि जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम उदित हो जाता है, जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है, हाँ, उसकी बातचीत उसके क्रिया, हाँ, क्या कर रहा है, उसकी मुद्रा कैसे बैठा है वो, हाँ, क्या बोल रहा है वो, विज्ञे ना पूजे, समझदार से समझदार बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति भी कोई होगा वो भी उसको समझ नहीं पाएगा, है ना। जैसे सो वैष्णवों के प्रति श्रद्धा रखने के लिए बहुत जानकारी होनी चाहिए कि वैष्णव की स्थिति बहुत उच्च होती है, उनको कुछ सस्ते ढंग से नहीं लेना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यास आसन पर बैठ के आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, आप अपने घर की बातों में लगे हुए हो, नहीं तो फेसबुक पे लगे रहो सो वो अच्छी बात नहीं है, है ना, हमें कोशिश करनी चाहिए बहुत सावधानी से सुनने का प्रयास करें। अगर सावधानी से सुनेंगे तो भी हो सकता है बात समझ में नहीं आए, अगर सावधानी से नहीं सुना फिर तो समझने की कोई संभावना ही नहीं है, नहीं। सो बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि वैष्णव की स्थिति बहुत उच्च होती है और उनको सस्ते ढंग से कभी नहीं लेना चाहिए, बहुत ही आदर और सम्मान देना चाहिए। कभी ऐसा लग सकता है हमें कि किसी वैष्णव में कुछ अवगुण दिख रहे हों, लेकिन फिर भी अगर कुछ अवगुण दिख भी रहे हों तो भी हमें ये अधिकार नहीं पहुँचता कि हम उस वैष्णवों के प्रति कुछ निंदा वाचक शब्द बोलें, उनकी निंदा करें, कुछ उल्टा सीधा बोलें, है ना, चुप रहना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और भगवान कृष्ण कह भी रहे हैं, अभी चेसु दुराचारो बजते माम अनन्य माम साधु एव स मंतव्य सम्यक एव व्यवस्था ही सा, कि अगर लगता है, अगर कभी लगे कि कोई वैष्णव है उसके अंदर कुछ कमी दिख रही है, हाँ उससे कुछ गलती हो गई, तो उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए तो बेकार है, नहीं उसको फिर भी साधु ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भजन में लगा हुआ है, वो आज जो कमी है वो कल दूर हो जाएगी और वो भी अच्छे भक्तों में शामिल हो जाएगा, है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि कोई भक्त का आचरण अच्छा नहीं है, लेकिन वास्तव में हम उसको ठीक से पहचान नहीं पाते, है ना। इसका उदाहरण हमें मिलता है श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में, जहाँ पर हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत ही घनिष्ठ अंतरंग भक्त हैं गदाधर पंडित, है ना, जो कि पंच तत्व में एक है, हाँ श्रीमती राधा रानी के विस्तार है, नहीं सो और श्रीमती राधा रानी के जो पिता हैं उनका नाम क्या है? वृषभानु, है ना। सो श्रीमती राधा रानी के पिता का नाम वृषभानु है। सो जो वृषभानु है वो गौर लीला में उनका क्या नाम हुआ? सो गौर लीला में उनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि, ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रेम से उनको नाम दिया प्रेमानिधि। हाँ इसका वर्णन श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में कर रहे हैं, और चैतन्य भागवत में तो वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत ही विस्तार से इसका वर्णन किया। सो दो हमारे मुख्य ग्रंथ हैं, वैसे तो और भी हैं लेकिन मुख्य ग्रंथ है हमारे, एक है चैतन्य चरितामृत जो कि श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने लिखी थी, और दूसरा ग्रंथ है चैतन्य भागवत, हाँ जो शिला वृंदावन दास ठाकुर ने लिखी थी। इसके अलावा चैतन्य मंगल है लोचनदास ठाकुर की, है ना। पुंडरीक विद्यानिधि है वो बंगाल में रहते थे, आपको पता होगा बंगाल के दो भाग हो गए थे, है ना, पहले एक ही बंगाल हुआ करता था, फिर उसके दो भाग हो गए, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इंडिया में शामिल हो गया और ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, है ना। सो अब तो बीच में सीमाएं खींच गई, हालांकि जो वहाँ के निवासी हैं वो भी आराम से बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, वो नहीं सोचते कि हम भारत में हैं कि बांग्लादेश में, रोज बॉर्डर क्रॉस करते रहते हैं। हाँ जैसे लोग जो है भारत से इधर भूटान में भी, क्योंकि सीमा लगी हुई है तो लोग भूटान में आते जाते रहते हैं, नेपाल में लोग आते जाते रहते हैं ना, ये सीमाएं लगी हुई हैं, जो वहाँ के सीमावर्ती लोग हैं वो इधर उधर आते जाते रहते हैं। हाँ लेकिन पहले ऐसी कोई सीमा नहीं थी, पहले एक बंगाल हुआ करता था। हाँ तो जो ईस्ट बंगाल जिसको अभी बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ पे एक जिला था चट्टग्राम, तो चट्टग्राम के निवासी थे पुंडरीक विद्यानिधि। और पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? वृषभानु है, ठीक है याद रखना, ओके। और क्योंकि वृषभानु श्रीमती राधा रानी के पिता है तो वो भगवान कृष्ण के भी पिता समान है ना। तो पुंडरीक विद्यानिधि के दो घर थे, एक चट्टग्राम में था ईस्ट बंगाल में, और उनका एक घर था मायापुर में, ठीक है। तो अभी वो मायापुर आए नहीं थे, वो भी चट्टग्राम में रह रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको निरंतर याद करते थे और बार बार बोलते थे कि जो पुंडरीक विद्यानिधि है मेरे पिता के समान है, कब मुझे वो दर्शन दूंगे। लेकिन लोग समझ नहीं पाते थे कि किसकी बात कर रहे हैं, कभी देखा नहीं उन्होंने, है ना। सो चैतन्य महाप्रभु के पास एक और भक्त रहते थे, उनका नाम था मुकुंद दत्त। सब जो मुकुंद दत्त थे वो भी चटग्राम के रहने वाले थे, वो जानते थे पुंडलिक विद्यानिधि को। उनको पुंडलिक विद्यानिधि के बारे में, उनकी महिमा के बारे में पूरी जानकारी थी। सो एक बार ऐसा हुआ कि पुंडलिक विद्यानिधि चटग्राम छोड़ के ईस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में नवद्वीप में आ गए, मायापुर में आके उन्होंने रहना शुरू किया। सो मुकुंद दत्त ने एक दिन बोला गदाधर पंडित को, चलो तुम्हें एक बहुत अच्छे वैष्णव से मिला के लेके आता हूँ। सो गदाधर पंडित बहुत खुश हुए और मुकुंद दत्त ने बोला उनको कि मैं आपको एक अच्छे वैष्णव से मिलाना चाहता हूँ ताकि आप मुझे अपना सेवक स्वीकार कर सको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना, भक्त किसी दूसरे भक्त की के लिए कुछ काम करता है इस भावना से कि वो भक्त खुश होकर उसको अपना सेवक स्वीकार करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा हम लोग हर भक्त को प्रभु कहकर बुलाते हैं। प्रभु का मतलब है मास्टर। नहीं मुझे चाहिए नहीं पानी, हाँ मैं थोड़ा गला खराब चल रहा है आजकल। हमारा भाव हमेशा यही रहना चाहिए कि हम सिर्फ मुंह से नहीं बोले कि आप प्रभु हैं, हाँ ऐसे विशेष प्रभु, पावन जनार्दन प्रभु, नहीं हमें वास्तव में हर एक भक्त को अपना स्वामी समझना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए हमें, है ना। तो मुकुंद दत्त ने बोला उनको कि मैं आपको एक वैष्णव से मिलवाना चाहता हूँ, बहुत अच्छे वैष्णव हैं, ताकि आप मुझे अपना सेवक मान सको। तो गदाधर पंडित ने बोला कि अच्छे वैष्णव से कौन नहीं मिलना चाहेगा। तो वो दोनों गए पुंडलिक विद्यानिधि के घर, और जब पुंडलिक विद्यानिधि के घर गए तो गदाधर पंडित ने देखा कि पुंडलिक विद्यानिधि एक लाल रंग के सोफे में बैठे हुए थे और वो जो सोफा था लाल रंग का कपड़ा उस पर चढ़ा हुआ था और पीतल के जो हैं उस पर डिजाइन बने हुए थे, उसके उनके सिर पे दो तीन छतर लगे हुए थे, पान खा रहे थे वो और पीकदान पड़े हुए थे और उनके सिर में सुगंधित तेल लगा हुआ था, उन्होंने सिल्क के कपड़े डाले हुए थे। हाँ एक दाएं और एक बाएं दो व्यक्ति खड़े थे, उनको जो है पंखा चल रहे थे उनको। हाँ
क्या चीज,
हाँ हवा दे रहे थे। हाँ सो दो लोग उनके हाथ दबा रहे थे, दो लोग टांगे दबा रहे थे। हाँ बड़े आराम से बैठे हुए थे। तो गदाधर पंडित ने सोचा ये कहाँ पे ले आए मेरे को। इन्होंने तो कहा था कि बहुत अच्छे वैष्णव से मिलवाएंगे, लेकिन ये तो बहुत बड़े कुछ भौतिक विषयी व्यक्ति लग रहे हैं, इनमें कुछ वैष्णवता का गुण दिखाई नहीं देगा, कहीं गलत जगह तो नहीं ले आए मेरे को मुकुंद प्रभु। सो मुकुंद दत्त जो है वो गदाधर पंडित के इस भाव को भाव गए कि ये पुंडलिक विद्यानिधि की महिमा को समझ नहीं पा रहे, तो उन्होंने पुंडलिक विद्यानिधि की महिमा को दिखाने के लिए उन्होंने भागवतम का एक श्लोक बोला और उस श्लोक के द्वारा उन्होंने भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान किया और उन्होंने वो प्रसंग दोहराया जहाँ पर कि पूतना अपने वक्ष पर अपने स्तनों पर कालकूट नामक जहर लगाकर विष लगाकर भगवान कृष्ण को मारने के लिए। भगवान ने उसके प्राण तो भरे लेकिन भगवान ने पूतना की सेवा को भी स्वीकार किया कि उसने भगवान को स्तनपान अर्पण किया था, और इस कारण से भगवान ने उसके सारे दोषों को अनदेखा करके उसको अपनी माँ का दर्जा दिया और भगवत धाम उसको भेजा। तो भागवत को श्लोक में लिखा है कि कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो इतने दयालु भगवान को छोड़कर, जिन्होंने कालकूट विष देने वाली स्त्री को भी अपना माँ का दर्जा दिया, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसे भगवान को छोड़ के कहीं और चला जाए। जैसे ही पुनर्विद्या देंगे ये श्लोक सुना, ये प्रसंग सुना, उनके शरीर में एकदम से अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए। हाँ, उन्होंने अपने सारे कपड़े फाड़ लिए, बाल उनके बिखर गए। हाँ, और वो हाथ पैर चला रहे थे बहुत तेजी से, सारे जो मटके वटके पीक दान पड़े थे सब इधर उधर गिर गए, सोफा भी दूर जाके गिरा, जमीन पे लोटना शुरू कर दिया उन्होंने। तो बहुत सारे 10-12 लोग आ गए उनको पकड़ने के लिए, कोई भी पकड़ नहीं पा रहा। तो गदाधर पंडित ने देखा ये क्या हो गया, एकदम से अभी तो एक भौतिक व्यक्ति की तरह लग रहे थे, अभी अचानक ही कृष्ण प्रेम में इतना विवल हो गए कि अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। 6 घंटे लग गए उनको, 6 घंटे तक बेसुध पड़े थे। हाँ, पुंडरीक विद्या। सो जब गदाधर पंडित ने देखा तो उनको बहुत दुख हुआ। उनको दुख क्यों हुआ? उनको दुख इसलिए हुआ कि एक इतने अच्छे वैष्णव जो कि कृष्ण प्रेम में इतना विवल है, उनको उन्होंने भौतिक व्यक्ति समझने की गलती की। लेकिन वो इस चीज से बहुत प्रसन्न थे कि उनके पास में एक भक्त थे जिनका नाम मुकुंदत है, जिन्होंने उस इतने उच्च वैष्णव की महिमा का दर्शन करवा के उनको वैष्णव अपराध करने से बचा। तो ये बहुत ही शिक्षा प्रद बात है कि क्योंकि गदाधर पंडित जो है वो मुकुंद दत्त के साथ में थे, इसलिए वो वैष्णव अपराध करने से बचे, और उन्होंने पुनरीक विद्या ने जी से क्षमा मांगी और उनको बोला कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। क्यों शिष्य स्वीकार करें? क्योंकि जो गुरु है वो अपने शिष्य के सारे दोषों को माफ कर देता है ना। आपने श्लोक सुना होगा, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही कार्य कृष्ण कार्य करे आत्मसम, है ना। सो अगर कोई व्यक्ति गुरु की शरण लेता है तो गुरु उसके सारे अपराधों को नष्ट कर देता है, माफ कर देता है और उसको एकदम पवित्र बना देता है। लेकिन शर्त सिर्फ एक ही होती है कि उसको दोबारा से पाप नहीं करने चाहिए, ठीक है। सो गदाधर पंडित इस बात से बहुत खुश थे कि वो मुकुंदक जैसे वैष्णव के साथ थे जिन्होंने वैष्णव अपराध से उनकी रक्षा की। इसीलिए हम सबका भी एक कर्तव्य है कि हमें एक अच्छे वैष्णव के साथ रहना चाहिए, उनके संग रहना चाहिए, जिससे कि वो हमें बार बार चेतावनी देता रहे, बार बार हमें समझाता रहे, ताकि हम किसी भी वैष्णव के प्रति या हरि नाम के प्रति या धाम के प्रति अपराध करने से बचे, है ना। अगर हम स्वतंत्र मानसिकता के साथ चलने की कोशिश करेंगे तो चल सकते हैं, चलने में कुछ हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा संभव है कि हम भक्ति में आगे बढ़ते समय अनेक के अपराध करें जाने अनजाने में, उन अपराधों के चलते हमारी भक्ति में प्रगति रुक सकती है। इसीलिए जितने भागवत में कहा गया है कि उपदेष्टा अवश्य ग्रहण करना चाहिए, एक मार्गदर्शक एक गुरु हमें हमेशा धारण करना चाहिए, उनकी शरण लेनी चाहिए ताकि उनके मार्गदर्शन में हम भक्ति में तो आगे बढ़ें और साथ साथ में हम अपराधों से भी बचें। जो भक्ति में हमसे गलतियां होती हैं उससे हम अपने आप को बचाएं। अगर हम किसी सीनियर वैष्णव वरिष्ठ वैष्णव के संसर्ग में मार्गदर्शन में रहेंगे तो हम अवश्य अपराधों से बचेंगे, जिससे हम निर्विघ्न होकर और निश्चिंत होकर हम लोग भक्ति के अंगों का पालन कर सकेंगे और भक्ति में जिस तरह से बहुत ही अच्छे से हम प्रगति कर सकेंगे और भगवान कृष्ण का साक्षात कर पाएंगे। हरे कृष्ण।